नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना, विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कम्पेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भरोसे विकास और जन कल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से पराजित किया और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप जेड में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच 10:30 बजे शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के लिए 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया है कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यक अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया जाएगा। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट।
राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रूपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रूपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रूपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रूपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कम्पेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि उन महत्वपूर्ण मूल्यों का जश्न है जिन्हें बढ़ावा देने के लिए परम पावन दलाई लामा ने अपना जीवन समर्पित किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट जांग शमजांग ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन द्वारा परम पावन 14वें दलाई लामा के 51वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट जिला उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में भरोसे विकास और जन कल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती पर खास जोर दिया गया, जिसका मकसद किसानों और आम लोगों को प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मिट्टी की सेहत का प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, रोजगार के अवसर और जनता के लाभ के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के फायदों के बारे में जागरूक करना था। यह कार्यक्रम किसानों, सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बातचीत का एक मंच बना, जिसमें टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक जारी है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। बैठक का मुख्य विजन वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं।
इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया की विदेश मंत्री बुतमोंग बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। इस यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री सो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कराईकल में भी दो दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों तवांग और शियोमी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिवंग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में चिता मित्रों पर सहरिया जनजातीय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इनकी महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार।
महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। मैनचेस्टर में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट पर 161 रन बनाए थे। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले फ्लोरिडा में आज ग्रुप एच में केप वर्डे और उरुग्वे के बीच मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। ग्रुप जी में मुकाबले कल रात कैलिफोर्निया में ईरान और बेल्जियम के बीच खेला गया और मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। इससे पहले अटलांटा में ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार दर्ज जीत करके अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने की और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केन्द्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद यह गिरावट दर्ज की गई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों के शांति काल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।